दिन भर तारीख 22 जून दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद का सामना करेंगी पूर्व लोकसभा स्पीकर बीरा कुमार। लालू यादव बोले,
नीतीश जी हमको फोन किए थे, मेरी निजी राय है, हम कहीं सब गलती भी मत करिए, ऐतिहासिक गलती मत करिए, फिर भी हम अपील करते हैं नीतीश कुमार से वो विचार करें अपने।
मीरा कुमार की उम्मीदवारी के क्या है मायने, करेंगे विश्लेषण। भारत प्रशासित कश्मीर में क्या सेना के कामों का राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश में है सरकार?
ये कहना कि सरकार हैज डन अ गुड जॉब, दैट इज नॉट पॉलिटिसाइजेशन, पर हमारे प्रधानमंत्री ने किया, उसका नाम लेके कहना वो पॉलिटिसाइजेशन होगी आर्मी।
कार्यक्रम में होगी आपकी राय भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। कांग्रेस और वाम दलों समेत विपक्षी दलों ने एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के मुकाबले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को राष्ट्रपति चुनाव में उतार दिया है। मीरा कुमार पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं और 5 बार सांसद रह चुकी हैं। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से मीरा कुमार को विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। बीएसपी नेता मायावती ने भी कहा है कि मीरा कुमार का समर्थन करेंगी। पहले उन्होंने कहा था कि वो एनडीए के दलित उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का विरोध नहीं कर सकती। अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित लश्करगाह शहर में एक कार बम धमाका हुआ है जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई है और 60 लोग घायल हो गए हैं। लश्करगाह हेलमंड प्रांत की राजधानी है। ये धमाका एक बैंक के बाहर हुआ जब लोग अपनी तनख्वाह लेने के लिए बैंक के बाहर कतार में खड़े थे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की प्रवक्ता ने कहा है कि ईद के लिए खरीदारी कर रहे कुछ लोगों की भी इस धमाके में मौत हो गई है। अभी किसी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे गठबंधन के अमरीकी दूत ब्रेट मैकगर्क ने कहा है कि मोसुल शहर में 800 साल से ज्यादा पुरानी ग्रेट अल नूरी मस्जिद ध्वस्त करने से इस्लामिक स्टेट की मजबूरी साफ झलकती है। इराकी सेना की तरफ से जारी एक फुटेज में कहा गया है कि आईएस के नियंत्रण वाले इलाके में मस्जिद को जानबूझकर उड़ाया गया है। आईएस नेता अबू बकर अल बगदादी ने 2014 में यहीं से एक नया तथाकथित इस्लामिक राज बनाने की घोषणा की थी। मोसुल शहर में आईएस लगातार इन दिनों कमजोर पड़ता जा रहा है और पुराने शहर की गलियों तक सीमित रह गया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने अल नूरी मस्जिद की तबाही को दर्दनाक बताया है। पेरिस में यूनेस्को के एक अधिकारी लजारे इलोंडो असोमो ने ये कहा,
It is really an important loss, not only for Iraq, but for the whole humanity.
ये सिर्फ इराक नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बड़ा नुकसान है। ये प्रतिष्ठित ऐतिहासिक विरासत थी जो शांति प्रक्रिया के लिए बाद में मददगार साबित हो सकती थी। इस मस्जिद पर नाज करने वाले इराक और मोसुल के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। ये थे लजारे इलोंडो ओसोमो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर में प्रदर्शनों के दौरान आज एक युवक की मौत हो गई। इसके अलावा दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के काकापोरा में बुधवार रात यानी कि कल लश्कर ए तैयबा के 3 चरमपंथी सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में मार गिराए गए थे। मुठभेड़ में चरमपंथियों की मौत के बाद इलाके में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। आईसीसी चैंपियनशिप फाइनल में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के कथित मामले में मध्य प्रदेश में पुलिस ने 15 लोगों पर से देशद्रोह का मामला वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि इन लोगों पर देशद्रोह के आरोप साबित करना आसान नहीं है, लेकिन इन पर साजिश करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप बने रहेंगे। अमरीका ने जोर देकर कहा है कि चीन को उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर लगाम कसने के लिए कोशिशें तेज करनी चाहिए। वॉशिंगटन में चीनी और अमरीकी अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने ये कहा, अमेरिका और चीन को सेना में सहयोग की संभावनाओं पर भी सोचना चाहिए। इसमें दोनों देशों के सेनाधिकारियों के आदान प्रदान पर विचार किया जाना चाहिए जिससे पारदर्शिता, आपसी समझ और सामरिक मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा मिलेगा। ये थे जेम्स मैटिस के शब्द। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। तो आखिरकार आज सस्पेंस खत्म हुआ और साफ हो गया कि राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद का सामना अब मीरा कुमार से होगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद के नाम की घोषणा की थी, उसी दिन से इस बात के कयास लगने शुरू हो गए थे कि विपक्ष की ओर से भी किसी दलित नेता का नाम सामने आएगा। आज दिल्ली में विपक्षी दलों की 17 पार्टियां इकट्ठी हुईं और उन्होंने सर्वसम्मति से पूर्व मंत्री और लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना। इस तरह से 17 जुलाई को राष्ट्रपति पद का चुनाव अब और भी दिलचस्प हो गया है। सुनिए जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
राष्ट्रपति पद का चुनाव दलित बनाम दलित होकर रह गया है। इस हफ्ते के शुरू में पहले एनडीए गठबंधन ने बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार घोषित किया और अब यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बिहार की मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। आज की मीटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने विपक्ष के फैसले को मीडिया वालों तक पहुँचाया। गुलाम नबी आजाद कह रहे थे कि सभी 17 सियासी पार्टियों ने आने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एकमत होकर मीरा कुमार के नाम का सुझाव दिया। मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। जगजीवन राम स्वतंत्रता सेनानी थे, सामाजिक न्याय के लिए वो लड़ते थे और वो देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये थे गुलाम नबी आजाद के शब्द। आज की बैठक में विपक्ष की 18 पार्टियों में से 17 ने भाग लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड भी इस गठबंधन में पहले शामिल थी, लेकिन अब इसने एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। बिहार में लालू प्रसाद के राष्ट्रवादी जनता दल और नीतीश कुमार की पार्टी की मिलीजुली सरकार है। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच अब नहीं बन रही है। मीडिया वालों से बातें करते हुए लालू प्रसाद ने इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया।
तब पहले तो वही लोग मीटिंग में आए थे कि जो फैसला होगा उसी के साथ रहेंगे। अब बीच में क्या पता नहीं क्या इन लोगों के बीच में क्या हुआ दिमाग बना है। नीतीश जी हमको फोन किए थे कि मेरी निजी राय है, हम कहे सब गलती भी मत करिए, ऐतिहासिक गलती मत करिए, फिर भी हम अपील करते हैं नीतीश कुमार से कि वो विचार करे अपने गठबंधन में। गठबंधन को हमको तोड़ना नहीं न है, गठबंधन है।
कहा यह भी जा रहा था कि विपक्ष में रामनाथ कोविंद को लेकर मतभेद पैदा हो गया है। विपक्ष की कई पार्टियों ने इशारा किया था कि वो श्री कोविंद को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मीरा कुमार पर एकमत होकर सभी पार्टियों ने फैसला किया। दलित नेता मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने मीरा कुमार को अपना समर्थन तुरंत ही दे दिया, जैसा कि पार्टी के प्रवक्ता सतीश मिश्रा ने बताया।
बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी की हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने पहले दिन ही प्रेस में कहा था कि अगर कोई इनसे बेहतर और ज्यादा योग्य कैंडिडेट आता है दलित समाज से तो वो सपोर्ट करेंगे। आज उनकी कंसेंट नाम आया, उस पे दी और उसको हम लोगों ने सपोर्ट किया है।
मीरा कुमार 72 वर्ष की हैं, जिनका जन्म बिहार के आरा जिला में हुआ था। यूपीए सरकार में 2004 में वो कैबिनेट मंत्री बनी, 2009 में लोकसभा की अध्यक्ष बनाई गई। लोकसभा की वो पहली महिला अध्यक्ष थी। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
मीरा कुमार के नाम से राष्ट्रपति चुनाव में क्या कोई ट्विस्ट आ सकता है? मीरा कुमार के नाम की घोषणा के बाद कोविंद की दावेदारी पर क्या कोई असर पड़ेगा? विश्लेषण के लिए मैंने बात की हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा से।
देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन तो रामनाथ कोविंद ही जीतेंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो रूलिंग कंबाइन एनडीए है उनके पास एक बड़ा एडवांटेज है। उनके पास सिर्फ 20,000 के करीब वेटेड वोट्स जो होते हैं प्रेसिडेंशियल कॉलेज में वो कम थे, और वाईएसआर कांग्रेस जो है उसने उनको समर्थन घोषित कर दिया है। केसीआर की पार्टी ने समर्थन तेलंगाना में घोषित कर दिया है, तो उसके चलते नंबर्स तो उनके पास आ गए हैं। अब सिर्फ इतना ही है कि दोनों तरफ से प्रतिस्पर्धा है दलितों को रुझाने की, उनको अपने साथ जोड़ने की इलेक्टोरली, सिर्फ उतना ही है। क्योंकि कोई अगर दलित प्रेसिडेंट मनोनीत हो जाता है किसी फ्रंट के द्वारा तो इसका मतलब ये नहीं कि तापूरा दलित समाज जो है उनकी तरफ चला जाएगा। लेकिन एक फर्क है, मीरा कुमार जाटव समाज से आती हैं और जिनकी ज्यादा तादाद बिहार में नहीं है। कोली समाज जो है वो नॉन जाटव दलित समाज है, जिनको रुझाने की कोशिश हमेशा से नीतीश कुमार करते रहे हैं। कोली समाज महादलित तो नहीं है, लेकिन नॉन जाटव जरूर है, और उसके चलते मैं समझता हूँ कि राजनीतिक तौर पे नीतीश कुमार ने जो समर्थन रामनाथ कोविंद को दिया है उससे कोई उनको बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। सिर्फ एक ही फर्क है कि मीरा कुमार बिहार से हैं और उनके खिलाफ सवाल उठाए जा सकते हैं।
लालू यादव कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार से इस बारे में फिर से बात करेंगे और कहेंगे कि भाई गठबंधन को मत तोड़ो, तो क्या नीतीश कुमार पुनर्विचार कर सकते हैं?
नहीं, कर तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में, लेकिन जो नीतीश कुमार है उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। वो एक बार जब उन्होंने कुछ कह दिया तो वो उसी पे डटे रहते हैं। कोशिश जरूर होंगी कि वो दोबारा सोचे अपनी पोजीशन को।
मायावती के बारे में ये कहा जा रहा था कि भाई वो उन्होंने पहले कोविंद के लिए कहा कि अगर उनसे बेहतर प्रत्याशी आएगा तो उसको समर्थन देंगे, और समर्थन उन्होंने दे दिया। मायावती के लिए कितना सोची समझी ये बात है और कितना बड़ा फैसला?
उनके हिसाब से तो बिल्कुल साफ है, मायावती का जो कोर वोट है वो जाटव वोट है और मीरा कुमार जो है वो जाटव दलित है, तो इसलिए मायावती का समर्थन मीरा कुमार को कोई ज्यादा अचंभा करने वाला समर्थन नहीं है। वो समर्थन राजनीतिक तौर पे उनके लिहाज से सही समर्थन है।
तो विनोद जी, अगर ये तय है कि कोविंद ही राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो फिर ये एक विपक्षी एकजुटता के मायने क्या हैं? क्यों जुट रहे हैं?
इस सब गणित से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रामनाथ कोविंद जो है वो अगले राष्ट्रपति होंगे। आज के दिन ये आमना सामना इसलिए रचाया गया है कि बाद में इलेक्शन के दौरान बात करने के लिए कोई टॉकिंग पॉइंट्स होने चाहिए, कि जो विपक्ष है वो भी ये कहेगा कि हमने एक दलित को मनोनीत किया था और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अकेली नहीं दलितों की हितैषी है, हमने भी दलितों के साथ खड़े होके उनके नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश की है।
मीरा कुमार बनाम रामनाथ कोविंद विश्लेषण कर रहे थे हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। भारत प्रशासित कश्मीर में प्रदर्शनों के दौरान आज एक युवक की मौत हो गई। इसके अलावा दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के काकापुरा में कल रात लश्करे तैयबा के 3 चरमपंथी सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में मारे गए। मुठभेड़ में चरमपंथियों की मौत के बाद इलाके में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुईं। श्रीनगर से हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
जिला पुलवामा के काकपुरा में गुरुवार सुबह को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 3 चरमपंथियों को मारे जाने के बाद इलाके में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शनों के अलावा सुरक्षा बलों के साथ झड़पें की, जिस दौरान 25 साल के एक आम नागरिक तौसीफ अहमद वानी की पैलेट लगने से मौत हो गई है। अहम पुलिस ने एक बयान में कहा है कि हिंसक प्रदर्शनकारियों ने काकपुरा में एक पुलिस पोस्ट पर हमला किया, जिस दौरान भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए तौसीफ घायल हो गया, जिसकी बाद में मौत हो गई। पुलिस ने बयान में यह भी कहा है कि तौसीफ के ऊपर पत्थरबाजी के 10 मामले दर्ज थे। उन्हें 2 बार PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया जा चुका था। सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में 2 दर्जन से भी ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल बताए जाते हैं। तौसीफ अहमद और चरमपंथियों के जनाजों में हजारों लोग शामिल हो गए और आज़ादी के हक में नारे लगाए। तौसीफ अहमद और चरमपंथियों की मौत की खबर फैलने के साथ ही जिला पुलवामा के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए। पुलवामा में तनाव को देख प्रशासन ने आम लोगों के चलने फिरने पर प्रतिबंध लगा दिया है और मोबाइल इंटरनेट सेवा को भी फिलहाल बंद किया है, जबकि रेल सेवा को भी सुरक्षा कारणों को देखते हुए बंद किया गया है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के अवंतीपुरा इलाके में भी झड़पों और प्रदर्शनों के कारण कई घंटों तक गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित रही। बुधवार को भी उत्तरी कश्मीर के सोपोर में एक मुठभेड़ के दौरान 2 चरमपंथियों को मारने का दावा किया गया था। दक्षिणी कश्मीर चरमपंथ का गढ़ समझा जाता है। बीते कई दिनों से जहां एक तरफ चरमपंथ हमलों में तेजी आ गई है, वहीं चरमपंथियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान को तेज कर दिया है। बीते एक महीने में चरमपंथियों के कई एक बड़े कमांडर सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा चुके हैं, जबकि बीते 4 महीनों में जम्मू कश्मीर पुलिस के 16 जवान चरमपंथ हमलों में मारे गए हैं। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
पिछले दिनों कश्मीर को लेकर सेनाध्यक्ष विपिन रावत ने कुछ इस तरह के बयान दिए हैं जिन्हें देने से सामान्यतः सेना के अधिकारी अब तक बचते रहे हैं। साथ ही सामने आया मेजर गोगोई का मामला जिन्होंने एक कश्मीरी युवक को जीप के बोनट से बैठाकर मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। साथ ही ये सवाल उठ रहे हैं कि वर्तमान सरकार सेना के कामों का राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश में है। कुछ लोग इसे सेना के राजनीतिकरण के तौर पर देखते हैं। एक विश्लेषण के साथ हैं हमारे सहयोगी फैसल मोहम्मद अली।
पूर्व जनरल अशोक मेहता को वो पोस्टर कई माह गुजर जाने के बाद भी अच्छी तरह याद हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े सैनिक अधिकारी रणवीर सिंह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के वो बड़े बड़े पोस्टर लखनऊ में तकरीबन हर अहम जगह पर मौजूद, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए।
वो इलेक्शन होने वाला था तो मैंने जब वो देखा, वो सिर्फ एक जगह नहीं देखा, काफी जगह पे देखा। और इतना ही नहीं, कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री को भी लखनऊ बुलाया गया और वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत जगह है, वो छतर मंजिल में उनको लखनऊ के मेयर ने जिस तरीके से पुराने ज़माने में राजा लोग युद्ध जीत के आते थे तो उनका स्वागत होता था, उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ और उनको वो इंग्लिश में कहते हैं मेस, वो प्रेजेंट किया गया।
फौज के पूर्व अधिकारी को ये पोस्टर सेना के कारनामों का राजनीतिक फायदा उठाने वाले लगे। उन्होंने सेना के राजनीतिकरण के सवाल को अपने एक लेख में उठाया। इस सवाल पर दूसरे हलकों और सेना में भी चर्चा हो रही है। पूर्व सैनिक और इंडियन एक्सप्रेस अखबार के एसोसिएट एडिटर सुशांत सिंह कहते हैं कि सेना की कामयाबी का राजनीतिक फायदा लेने की कवायद पहले भी हुई है, लेकिन उनके लिए जो बात चिंताजनक है वो है कश्मीर जैसे मामले में फौज की पोजीशन।
1999 में कारगिल की लड़ाई के बाद भी भाजपा की सरकार थी देश में, जब वो चुनाव के लिए जा रहे थे तो उन्होंने उस टाइम भी इस तरह के पोस्टर लगाए थे। पर उसके बाद जो हुआ है कश्मीर में, जिस तरह से लोगों का जो मूवमेंट है और जिस तरह से वहाँ पर मिलिटेंट अटैक वगैरह हो रहे हैं, और जो कि आर्मी का रिस्पॉन्स है और आर्मी की जिस तरह की पब्लिक पोजीशंस रही हैं पिछले कुछ हफ्तों में, उससे लोगों को ये ज़रूर लगा है कि राजनीतिकरण हो रहा है सेना का।
पूर्व जनरल शंकर प्रसाद सेना के राजनीतिकरण के सवाल पर लगभग झल्ला जाते हैं और कहते हैं न है, न होगा और न होने देंगे। लेकिन उन्हें भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर किए गए फौजी ऑपरेशन पर सरकार की तरफ से आए कुछ बयान अनुचित लगते हैं।
प्रधानमंत्री तो हर एक चीज़ के हकदार हैं, अगर गलत एक्शन होगा उसके भी जिम्मेवार हैं और अच्छा एक्शन होगा उसकी भी उनको क्रेडिट जाएगी। तो ये कहना कि सरकार हैज़ डन अ गुड जॉब, दैट इज़ नॉट पोलिटिसाइजेशन। पर हमारे प्रधानमंत्री फलाने फलाने ने किया, इंदिरा गांधी ने किया या नरसिम्हा राव ने किया या किसी ने भी किया, उसका नाम लेके कहना वो पोलिटिसाइजेशन होगी आर्मी की।
पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता का बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इसकी सफलता को अपनी आरएसएस की ट्रेनिंग से भी जोड़ने की कोशिश की थी। सेना प्रमुख विपिन रावत ने हालांकि कश्मीर पर कई तीखे बयान दिए हैं, लेकिन हाल के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि पत्थर फेंकने की बजाय वो हम पर गोलियाँ चला रहे होते, तब मैं खुश होता, क्योंकि तब मैं वो सब कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। सेना प्रमुख ने न केवल मेजर गोगोई को प्रशंसा पत्र दिया बल्कि उसे सही भी ठहराया है। मेजर गोगोई ने कश्मीरी युवक को जीप के बोनट से बांधकर मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। मेजर जनरल अफसर करीम हालांकि गोगोई की हरकत पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करते, लेकिन मानते हैं
बहुत जल्दी अवार्ड दे दिया, ये थोड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन आर्मी ने अपने फौज को बतला रखा है कि ये दोबारा ऐसी चीजें नहीं हो सकती।
सुशांत सिंह मगर इस बात का एक दूसरा पहलू पेश करते हैं।
पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट ना कि डिप्लोमेटिक है ना पॉलिटिकल है, सेम कश्मीर में पॉलिटिकल आउटरीच बिल्कुल मिसिंग है। उसकी वजह से सेना अपने आप ही सामने आ जा रही है, सेना पूरी तरह से एक तरह से सेना फेस बन जा रही है भारतीय स्टेट का।
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने चंद दिनों पहले ही एक बयान में कहा, भारतीय सेना पाकिस्तानी फौज की तरह माफिया नहीं है जो गुंडों की तरह सड़क पर बयान देती है। बुरा लगता है जब हमारे सेना प्रमुख सड़क के गुंडों जैसे बयान देते हैं। दीक्षित के बयान पर बहुत हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि राजनेताओं को सेना प्रमुख पर बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से माफी की मांग करती रही। दीक्षित ने भी एक ट्वीट के जरिए कहा कि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था उसके लिए उन्हें खेद है। सीनियर समाजवादी नेता शरद यादव भी पहले नागरिक प्रतिनिधियों की बजाय सेना के जनता से सीधे संवाद पर चिंता जता चुके हैं। सुशांत सिंह कहते हैं वर्तमान सरकार सेना को आगे खड़ा कर ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है।
देखिए, बीजेपी का हमेशा से मानना ये रहा है हिस्टोरिकली, जब जनसंघ के जमाने से, कि वो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, वो सेना को कोऑप्ट करना चाहते हैं, वो सेना को बोलना चाहते हैं कि भाई सेना और बीजेपी एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ सेना है और एक तरफ बीजेपी है, जिससे कि जब कोई व्यक्ति भाजपा की बुराई करे तो वो बोले कि आप भाजपा की नहीं, आप सेना की बुराई कर रहे हैं।
मेजर जनरल अफसर करीम कहते हैं कि अगर आगे भी इसी तरह का रवैया जारी रहा तो नुकसानदेह हो सकता है।
तो अगर समझने वाले लीडर हैं तो फौज को ना पॉलिटिकल होने देंगे ना रिलीजियस होने देंगे।
फौज के पूर्व अधिकारी भी ये चेतावनी देते हैं कि राजनीतिकरण से सेना के लड़ने की क्षमता कम होती है, जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। वो पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन एक भी नहीं जीते। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
पिछले साल से लगातार बिहार में 10वीं और 12वीं परीक्षा और उसके नतीजे चर्चा में रहते हैं। पिछले साल और इस साल 12वीं के टॉपर पर सवाल उठे और इसी साल 12वीं के रिजल्ट में आधे से ज्यादा छात्र फेल हो गए। आज 10वीं के परिणाम आए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं के नतीजों में आधे छात्र पास तो आधे फेल हुए। प्रेम कुमार के नाम के एक छात्र ने टॉप किया। उन्होंने 500 में से 465 अंक हासिल किए। पटना से और जानकारी नीरज सहाय से।
इस परीक्षा में कुल 17,23,000 छात्र छात्राओं में से 8,63,000 ने सफलता प्राप्त की है। दरअसल बिहार बोर्ड पिछले साल से इंटर परीक्षा टॉपर घोटाले और फेल होने वालों की बड़ी संख्या के कारण सुर्खियों में रही है। जबकि आज बिहार बोर्ड द्वारा जारी 10वीं की परीक्षा के परिणाम में सफल और असफल छात्रों की संख्या लगभग बराबर रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने परिणाम जारी करते हुए कहा कि इस बार के सफल छात्रों की संख्या में 3% का इजाफा हुआ है। इस दौरान समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दावा किया कि कदाचार मुक्त परीक्षा का परिणाम संतोषजनक है। पहली बार बिहार बोर्ड ने शीर्ष 10 स्थान पाने वाले छात्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रिजल्ट जारी किया है। साथ ही उन्होंने परीक्षा में टॉप 10 रहे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने की भी जानकारी दी। अब देखना यह है कि तमाम दावों के बाद भी क्या बिहार बोर्ड की 10वीं का परिणाम इंटर के रिजल्ट की तरह फिर से विवादों में घिरता है या एक सुखद कल की अनुभूति कराता है। नीरज सहाय, बीबीसी पटना।
तो अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस परिणाम पर कोई चर्चा होती है कि नहीं होती है। लेकिन आधे से ज्यादा छात्र फेल हो गए 10वीं के बिहार बोर्ड के रिजल्ट में। और अब कार्यक्रम में बारी है आपकी चिट्ठियों की, जिन्हें आपने हम तक भेजा।
आपकी राय आज आपके पत्रों के साथ। स्टूडियो में मैं हूँ वंदना, मेरा नमस्कार, और मेरे साथ हैं स्टूडियो में पंकज प्रियदर्शी।
मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को।
शुरू कर रही हूँ मैं चिट्ठियों से, और हमारे बहुत ही पुराने और नियमित श्रोता हैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव
जी,
ग्राम कैथनपुरवा, पोस्ट सातनपुरवा, जिला अमेठी। इनकी शिकायत है कि डाक से भेजे पत्रों की उपेक्षा होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि ईमेल से भेजने वाले जो लोग हैं वो रेडियो नहीं सुनते हैं, वो तो बस स्मार्टफोन की दुनिया में खोए रहते हैं, और अक्सर आप हमारी चिट्ठियों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो कि डाक से भेजते हैं।
देखिए प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे नियमित श्रोता हैं और तुरंत प्रतिक्रिया भी देते हैं कार्यक्रम सुनने के बाद। लेकिन जहाँ तक आपने ये ईमेल वाले श्रोता और चिट्ठी वाले श्रोताओं में अंतर की बात की है, तो दोनों ही श्रोता हमारे लिए महत्वपूर्ण है वंदना। और जाहिर है जो लोग पोस्ट कार्ड पर चिट्ठी लिखते हैं, बहुत दूर दराज से लिखते हैं, उनके पास इंटरनेट की समस्या भी होती है, कई लोगों के पास उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं होते हैं। लेकिन हम कार्यक्रम करते हैं तो हम सबके लिए करते हैं।
चिट्ठियां हम बिल्कुल लेते हैं और बहुत तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं कि लोग लिखते हैं। और बहुत ही, जैसे इन्होंने लिखी है, नागेंद्र कुमार कुशवाहा, पिपराही बाजार, जिला शिवहर, बिहार से। ये भी लिखते हैं हर बार, और एकदम लाल रंग से, फिर नीले रंग से, पूरा उसको कलर कोडिंग करके लिखते हैं। इन्होंने कहा है कि रेहान फजल साहब का जो कार्यक्रम था विवेचना, बहुत अच्छा लगा और ज्ञानवर्धक लगा। जो कार्यक्रम था शायद बाला साहब देवरस पर, उनकी पुण्यतिथि पर, इन्होंने कहा कि बहुत ही नई नई जानकारियाँ इनको सुनने को मिली।
तो नागेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जहाँ तक आपकी और प्रमोद जी की शिकायत है, तो मैंने पहले पत्र के जवाब में इसको स्पष्ट करने की कोशिश की और उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे कि हमारे लिए श्रोता श्रोता हैं, चाहे वो ईमेल से चिट्ठी भेजें या पोस्टकार्ड से भेजें। और रेहान साहब की विवेचना की जहाँ तक बात है, आप सभी लोग कार्यक्रम बहुत पसंद करते हैं, नई नई जानकारियाँ आप लोगों को मिलती है, तो आगे भी हमारी ये कोशिश जारी रहेगी।
अब ईमेल ले लेते हैं।
बिल्कुल, अब ईमेल
भी ले लीजिए
क्योंकि हम बैलेंस भी करते हैं चीज़ों को।
जी, तो ये जो ईमेल आया है, इनका नाम है अनिरुद्ध कश्यप। वैसे तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन अब ये पोलैंड में रहते हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ पिछले 2 साल ही हुए हैं जब मैं हिंदी का नियमित श्रोता बन गया हूँ और मुझे अब दुख हो रहा है कि उससे पहले मैं बीबीसी रेडियो का श्रोता क्यों नहीं था। तो इनको कार्यक्रम बोल रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और इतने अच्छे समाचार देने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।
बहुत बहुत स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी परिवार में। और प्रमोद जी का नाम लेकर एक बार फिर मैं कहूं कि देखिए प्रमोद जी, एक ईमेल से हमारे नए श्रोता जुड़े हैं और आप हमारे बीबीसी हिंदी के बुजुर्ग श्रोता हैं, हमारे एक गार्जियन के तौर पर कार्यक्रम सुनते हैं, भेजते हैं। तो ऐसे श्रोता जो नए तकनीक के जरिए हमसे जुड़ते हैं,
पोलैंड से
सुनते हैं, तो जाहिर है वो हमारा कार्यक्रम मोबाइल पर या इंटरनेट पर सुनते होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है और आगे भी सुनते रहिएगा कार्यक्रम।
जी, और अगली जो ईमेल है, इनका नाम है गौरी सेन। ये हजरतगंज लखनऊ से लिख रही हैं। इनका कहना है, मैं तीसरी बार पत्र लिख रही हूँ, आपके आभारी हूँ कि मेरा पत्र पहले भी आपने शामिल किया। और ये कहना चाहती हैं कि मैं और मेरे कई दृष्टि बाधित साथी हिंदी साहित्य से जुड़े रहे हैं, अतः मैं चाहती हूँ कि आप साहित्य पर सप्ताह में एक दिन ही सही, लेकिन कोई छोटी सी रिपोर्ट प्रस्तुत करें या कुछ वेबसाइट पे ऐसा सीरीज शुरू करें।
गौरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पत्र लिखा। और जहाँ तक आपके सुझाव की बात है,
इनका सुझाव है,
बिल्कुल
तो उसे
इसको सुझाव को हम लोग नोट कर लेते हैं और इस पर अमल भी किया जाए।
और इन्होंने ये भी लिखा है साथ में कि आप महिला श्रोताओं को इतनी अहमियत देते हैं, स्पेशल फील कराते हैं, जी चाहता है कि बार बार पत्र लिखो।
बिल्कुल, लिखिए और वंदना भी है यहाँ पर कार्यक्रम में और लिखते रहिएगा आगे भी।
जाते जाते पंकज जी, एक जो है वो संदेश और ले लेते हैं। इन्होंने लिखा है ऑकलैंड न्यूजीलैंड से।
पोलैंड के बाद न्यूजीलैंड
की बारी आ गई। और बोल रहे, 15 साल से सुन रहा हूँ और राजेश जोशी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उनकी रिपोर्ट आई थी जो एक तरह से भीड़ तंत्र है, जो मॉब लिंचिंग को लेके उन्होंने विशेष सीरीज की थी। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, इनका नाम है नरेश कुमार, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने राजेश जोशी को विशेष धन्यवाद दिया है उस तरह की रिपोर्ट करने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे वंदना, कि जब जब इस तरह की घटनाएं सुर्खियों में रहती हैं, हम न सिर्फ समाचार देते हैं बल्कि उसके पीछे जाकर जो मनोवृत्ति होती है उसको भी तलाशने की कोशिश करते हैं। तो ये श्रृंखला जो राजेश जोशी ने पेश की थी वो इसी के तहत थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सभी को ये श्रृंखला हमारी बहुत।
और जाते जाते पता बता दें।
बिल्कुल, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003।
और अगर ईमेल करना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो आपने अपनी चिट्ठियां सुन ली और अब चलते चलते खेल समाचार भी सुन लेते हैं। राखी, क्या चल रहा है खेल की दुनिया में?
जी, बैडमिंटन के लिए लिहाज से आज भारतीय खिलाड़ियों के लिए अहम दिन रहा, जहां बी साई प्रणीत, के श्रीकांत, पीवी सिंधु और सायना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज में जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सायना ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए अंतिम 8 में प्रवेश किया। दूसरे दौर में उन्होंने मलेशिया की सोनिया चेक को 21-15, 20-22, 21-14 से मात दी। सायना इसी टूर्नामेंट को 2014 में जीत चुकी हैं। अब क्वार्टर फाइनल में का सामना छठी वरीयता प्राप्त चीनी खिलाड़ी सुन यू से होगा। सायना के अलावा सिंधु ने भी अपना विजय अभियान जारी रखते हुए दूसरे दौर में चीन के चेन शिया शिन को हराया और रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधु ने 46 मिनट तक चले इस मैच में शियाओ शिन को सीधे गेमों में 21-13, 21-18 से मात दी। वहीं मेन सिंगल्स में के श्रीकांत ने बड़ा उलटफेर किया और ऑस्ट्रेलिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने टॉप सीड सोन वान को 15-21, 21-13, 21-13 से हराया और बी साई प्रणीत भी अपना मुकाबला जीतकर अंतिम 8 में पहुंच गए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया राखी। और इससे पहले कि कार्यक्रम में आपसे विदा ले, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। विपक्षी दलों ने एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के मुकाबले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को राष्ट्रपति चुनाव में उतारा। अफगानिस्तान के लश्करगाह शहर में एक कार बम धमाका हुआ, इसमें 34 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग घायल हो गए हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में प्रदर्शनों के दौरान आज एक युवक की मौत हो गई है। काकापोरा में आज प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।